वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 21। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। खेल को अपने तरीके से खेलने के लिए अनंत इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। उसने पहले अनूप सिंह से मुलाकात की, फिर बल्लियों के ठिकाने पर पहुंच गया। वहां उसे भभूति तो नहीं मिला, मगर उसका सामना हुआ बल्लियों के बूढ़े बाबा से, जो गुस्से में अनंत पर बरस पड़ा। वहीं अनंत ने तूफान सिंह को भभूति तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए छोड़ दिया। ये देख सुशांत ने अनंत से कहा, तू इसे जाने दे रहा है? अनंत ने तसल्ली से जवाब दिया, हां, क्योंकि ये बूढ़ा बाबा हमारे पास है। बूढ़ा अब अनंत की कैद में उनके ठिकाने पर था। अनंत ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। अनंत बार बार कह रहा था कि अगर वो साथ मिलकर काम करें तो इस बार अंजाम कुछ अच्छा हो सकता है, मगर बूढ़ा, वो तो न जाने किस मिट्टी का बना था। वो अपनी उलझी हुई भाषा में लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। आखिरकार सुशांत बीच में बोल पड़ा, ए डोगरे, क्यों इतना भाव कर रहा है? एक बार इसकी बात सुन तो ले। सुशांत का बोलना था कि बूढ़ा एकदम चुप हो गया। उसने सुशांत की तरफ खा जाने वाली निगाहों से जिस तरह देखा, उसने सुशांत को चिढ़ा दिया। सुशांत ने तुनक कर कहा, साले के कान पे एक रैप्टा लगाऊंगा। जवाब में बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। सुशांत को उसका यह अजीब व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन अनंत एक बार की कांप उठा। उसे वो वक्त याद आ गया जब पिछली बार पहाड़ पर बूढ़ा इस तरह से हंस रहा था। तभी सुशांत कमरे के कोने में रखा एक डंडा लेकर बूढ़े की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बूढ़े को चुप कराकर ही रहेगा। अनंत ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन अचानक से बूढ़े ने हंसना बंद कर दिया। ये देख सुशांत की चाल कुछ धीमी हुई ही थी कि वो बूढ़ा जोर से चिल्लाने लगा, थारो मरनो निश्चित है, तू ई बार भी बच को नहीं सके है, किस्मत का लिखान है तू बदल को नहीं सके है, तू ई बार भी मरेगो, थारो मरनो निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बूढ़ा फिर से हंसने लगा। जिस तरह से उसने ये बात कही थी, उससे सुशांत का आत्मविश्वास डोल गया था। उसने एक बार अनंत की तरफ देखा, मगर वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिला। बूढ़ा अभी भी हंसे जा रहा था। अब सुशांत से सहन नहीं हुआ, उसने डंडा उस बूढ़े के पैर पर दे मारा। बूढ़ा बिलबिला उठा, मगर उसका हंसना बंद नहीं हुआ। उसने फिर से कहा, तू मरेगो, तने पतो को नहीं है, पर तू ई बार भी निश्चित मरेगो। सुशांत ने उस पर एक दो डंडे और टिका दिए। बूढ़ा जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी अकड़ में कोई कमी नहीं आई थी। तभी राज और ज्ञान वहां आ गए और उन्होंने बूढ़े के मुंह पर टेप चिपका दिया। सुशांत पीछे हट गया और उसने अनंत की तरफ देखा। कुछ देर बाद दूसरे कमरे में अनंत और सुशांत दोनों आपस में बात कर रहे थे। सुशांत ने पूछा, ये बूढ़ा क्या कह रहा था? देख अनंत, मुझे सच सच जानना है। तूने भी तो कहा था कि खून बहेगा, लोग मरेंगे, क्या मैं भी? अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत ने अंदाजा लगाया, तो वो बूढ़ा सही कह रहा था, मैं पहले भी मर चुका हूं, एक बार या ज्यादा बार। अनंत ने कहा, हर बार। सुशांत हिल गया, हर बार? अनंत ने तसल्ली से जवाब दिया, हां, तीनों बार तेरी मौत हुई है, बस उसकी कहानी हर बार अलग तरीके से लिखी गई थी। सुशांत ने धीमी आवाज में कहा, तभी वो बूढ़ा कह रहा था कि मेरा मरना निश्चित है। सुशांत की पूरी एनर्जी जैसे खत्म हो गई थी। चाहे कोई कितना ही दिलेर बहादुर इंसान क्यों ना हो, अपनी निश्चित मौत के बारे में जानकर उसकी यही प्रतिक्रिया होगी। उसके कंधे झुक गए थे और वो एक तरफ शून्य में ताकने लगा। अनंत ने उसे ऐसी हताशा में देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरा यकीन कर। हर बार मैंने वैसा किया जैसा दूसरे चाहते थे, लेकिन इस बार गेम की कमांड मेरे हाथ में है और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, बिलीव मी। आज तक ऐसा हुआ है किसी काम को मैंने लीड किया हो और वो पूरा ना हुआ हो, इस बार कोई खून नहीं बहेगा, किसी की जान नहीं जाएगी, हम ये काम पूरा करेंगे और वापस दिल्ली लौट जाएंगे। अनंत ने जिस भरोसे के साथ सुशांत से ये बात कही थी, उसने सुशांत की खोई हिम्मत को वापस ला दिया। सुशांत ने पूछा, तो आगे क्या करना है? अनंत ने जवाब दिया, आगे हमें भभूति से मिलना है और यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, उसे जब पता लगा होगा कि हम बूढ़े को उठा लाए हैं तो इस वक्त पूरी ताकत लगाकर हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। सुशांत ने शक जाहिर किया, लेकिन उसे यह कैसे पता लगेगा कि हम लोग कौन हैं और कहां पर हैं? अनंत ने समझाया, देख जितना मैं इस बूढ़े को जानता हूं, उसने सबसे पहले भभूति को हमारे बारे में बता दिया होगा, उसे पता है कि हम लोग किस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, वो एक बार वहां जरूर जाएगा। लेकिन चूंकि पुलिस इस वक्त बल्लियों को सरगर्मी से ढूंढ रही है, तो मेरे हिसाब से यह सब आज रात में होना चाहिए। सुशांत ने अपना शक जाहिर किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अनंत के पास वाकई में इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अचकचाते हुए जवाब दिया, आज रात को नहीं तो कल रात को। अनंत के बोलने के लहजे से साफ पता लग रहा था कि उसे भी अपनी बात पर पूरा भरोसा नहीं है। सुशांत ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अनंत तू इस तरह से वक्त को बदलेगा? भाई मुझे तो लगता है कि इस बार भी मेरा मरना निश्चित है, निश्चित है। सुशांत ने जिस तरह से बूढ़े की नकल करते हुए कहा, उससे अनंत की भी हंसी फूट पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, यार कितनी बार हुआ है हम लोग अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, मगर सक्सेस हर बार मिलती थी ना, इस बार भी ऐसा ही होगा। सुशांत बोल पड़ा, मेरे भाई हर बार लोगों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगी होती थी, यहां प्लान फेल हुआ तो मैं तो निश्चित ही टपक जाऊंगा। अनंत ने विश्वास दिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, बिलीव मी। 11 फरवरी 2019 की रात, जगह वो गेस्ट हाउस जहां दो दिन पहले अनंत अपने साथियों के साथ ठहरा हुआ था। अनंत को पूरा भरोसा था कि आज रात बल्ली इस गेस्ट हाउस पर उन्हें ढूंढने जरूर आएंगे, लेकिन उस रात को ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अनंत और सुशांत दोनों गेस्ट हाउस पर कुछ दूरी से नजर रखे हुए थे, मगर पूरी रात वहां कोई हरकत नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर उन्हें वापस लौट आना पड़ा। अपना अनुमान इस तरह से फेल होते देख अनंत ने दिन भर बल्लियों को ढूंढने की कोशिशें की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 12 फरवरी 2019 रात करीब 12 बजे का वक्त, अनंत और सुशांत एक बार फिर से गेस्ट हाउस से कुछ दूर अपनी गाड़ी में मौजूद थे। पिछली रात की असफल कोशिश के बाद सुशांत को आज फिर से यहां आना बेवकूफी लग रही थी। उसने पूछा, तुझे क्यों लगता है कि वो डकैत इस गेस्ट हाउस में आएंगे? हो सकता है कि उन्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं हो सकता है हम उन्हें जितना समझदार समझ रहे हों वो उतने समझदार हों ही नहीं। अनंत ने पूरे हालात का विश्लेषण करते हुए कहा, देख उस बूढ़े को देखकर तो तुझे भी समझ आ गया होगा कि वो इस सब को लेकर कितना डेस्परेट है, और वो अकेला ही नहीं, भभूति बल्ली भी किसी भी कीमत पर 15 फरवरी की रात को उस रिचुअल को करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जैसे उस देवता ने टाइम को 9 फरवरी पर रीसेट किया, तो जिस तरह मैंने जल्दबाजी दिखाई वैसी जल्दबाजी उस बूढ़े ने भी दिखाई होगी और बल्लियों को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। बाकी उसने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि इस बार हम उसे ही किडनैप कर लेंगे, तो भभूति जरूर इस वक्त हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। अनंत ने जिस तरह अपनी बात रखी थी उससे सुशांत का संशय काफी हद तक दूर हो गया था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में अभी भी था। लेकिन अनंत ये बता कि वो इस जगह इस गेस्ट हाउस में आने का रिस्क क्यों लेंगे जबकि पुलिस उनको ढूंढ रही है? अनंत ने कहा, वो इसलिए क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं और जो चीज इस वक्त दांव पर लगी है उसे हासिल करने के लिए भभूति किसी भी हद तक जा सकता है। अनंत का सोचना सही था और उस रात को ठीक वैसा ही हुआ जैसा अनंत ने सोचा था। आधी रात के बाद उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। कुछ देर में दो जीपें गेस्ट हाउस के सामने पहुंच चुकी थी, जिनमें से करीब 7-8 लोग उतरकर गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। सुशांत ने अपने रिवॉल्वर संभालते हुए अनंत की तरफ देखा, लेकिन अनंत ने उसे चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया। करीब 15 मिनट में ही वो लोग वहां से बाहर आ चुके थे। गाड़ियों के थोड़ा आगे जाते ही उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक मोड़ पर दोनों गाड़ियां दो विपरीत दिशाओं में जाने लगी। सुशांत ने अनंत की तरफ देखा, लेकिन अनंत के पास भी तो इस बात का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में सुशांत ने अपने हिसाब से ही एक गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। हाईवे पर जीप तेजी से भाग रही थी। अनंत का इशारा पाते ही सुशांत ने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया और कुछ पलों में ही उसने जीप को ओवरटेक करके उसके ठीक सामने अपनी गाड़ी लगा दी। इस हरकत से जीप में बैठे लोग हड़बड़ा गए थे। सुशांत ने फुर्ती दिखाते हुए जीप में बैठे लोगों पर गन तान दी। उन लोगों को संभलने या हथियार संभालने का मौका नहीं मिला था। अब तक अनंत ने टॉर्च की रोशनी में पहचान लिया था कि वो बल्ली डकैत ही थे। अनंत की आशा के विपरीत गाड़ी में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। इस बात ने अनंत को थोड़ा आश्चर्य में जरूर डाल दिया। उसने गाड़ी में झांकते हुए कहा, भभूति बल्ली को बता दो कि बूढ़ा बाबा और कालशंकु दोनों हमारे पास हैं। अगर वो बात करना चाहता है तो यहां आ जाए। गाड़ी में से आवाज आई, ए सैरी बिलाव, तने पतो को नहीं है, ये पूरो इलाको भभूति बल्ली को है, अठे उनकी परमिशन के बगैर पत्तो भी कोनी कांपे है। ड्राइवर के बगल में बैठे तूफान सिंह ने जब यह कहा तो उसकी बात सुनकर सुशांत को हंसी आ गई। उसने रिवॉल्वर की नली तूफान सिंह की कनपटी पर लगा दी और दरवाजा खोलकर उसे जबरन बाहर निकाल लिया। सुशांत ने कहा, पत्ते का तो पता नहीं, मगर अभी तो तू कांपेगा, पिछली मार भूल गया क्या? तूफान सिंह भले ही अभी गन पॉइंट पर था, मगर ऐसा लगता था कि वो मरने से भी नहीं डरता था। अनंत सोच रहा था कि ये बल्ली न जाने किस चीज के बने हैं। अपने वक्त पर इन्होंने वाकई में अंग्रेजों की हालत खराब कर दी होगी। इधर तूफान सिंह ने सुशांत से उलझने की कोशिश की। अनंत ने देखा कि जीप में बैठे लोगों में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। ऐसे में अनंत ने बीच बचाव करते हुए कहा, फालतू बात नहीं, हम यहां कोई खून खराबा करने नहीं आए हैं, मुझे बस भभूति से बात करनी, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग और तुम्हारा भभूति भी यही चाहता है, लेकिन अगर फिर भी तुझको उलझने का शौक है तो देख ले। अनंत की बात ने जादू का सा असर किया। तूफान सिंह अब शांत था। अनंत ने गाड़ी में देखते हुए कहा, तुम भभूति से कहो, मैं उससे अभी बात करना चाहता हूं, इसमें उसकी और तुम सबकी भलाई है। अनंत ने अपनी बात कह दी थी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बल्लियों के बीच ऐसी शांति अनंत को खल रही थी। आखिरकार सुशांत ने कहा, फोन करो भभूति को। तूफान सिंह ने जवाब दिया, भभूति बल्ली फोन पे बात ना करे है। अनंत ने पूछा, तो हम उससे बात कैसे करेंगे? उसकी बात सुनकर तूफान सिंह एक रहस्यमयी मुस्कुराहट से भर उठा। अनंत को लगा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, सुशांत ने भी यह भांप लिया था। तभी गाड़ी में कुछ हलचल हुई। सुशांत ने तूफान सिंह की कनपटी पर बंदूक सटा दी, जबकि अनंत तेजी से गाड़ी की तरफ झपटा। एक हाथ में रिवॉल्वर संभाले उसने दूसरे हाथ से टॉर्च की रोशनी गाड़ी के अंदर डाली। वहां एक माचिस जलने की रोशनी हुई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही माचिस की तीली एक बीड़ी को सुलगा रही थी। अनंत को समझ आ गया था कि यह भभूति पल्ली ही है। उसने रिवॉल्वर को संभाल लिया। गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुला। उसमें से पहले एक आदमी नीचे उतरा और उसके बाद बीड़ी के कश फूंकता भभूति पल्ली। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 21। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस। दोस्तों, मैं दीपक मेड़तवाल वो कहानियां शो का क्रिएटर। कालशंकु कहानी के बारे में कुछ एपिसोड पहले भी मैंने कहा था कि यह कहानी केवल समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल की कहानी नहीं है। इस कहानी के मूल में प्रारब्ध यानी डेस्टिनी की लड़ाई है। हम सभी अपने प्रारब्ध से जूझते रहते हैं। इस प्रारब्ध पर बचपन के एक दोस्त ने मिडिल क्लास लाइफ के लिए कहा था कि मिडिल क्लास वालों की जिंदगी की सच्चाई है कि जब दांत होते हैं तो चबाने को चने नहीं मिलते, और जब चने मिल जाते हैं तो दांत नहीं रहते। कभी कभी उसकी बातों पर यकीन करने का दिल करता है, लेकिन क्या प्रारब्ध ही सब कुछ है? अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर इंसान का कर्म क्या है? क्या इंसान का कर्म मायने नहीं रखता? यही कुछ सवाल हैं जिनसे मैं भी जिंदगी में दो चार होता रहा हूं, और अपने अनुभवों, अपनी सोच और अपने कर्मों के आधार पर मैंने इस कहानी को आगे बढ़ाया है। मेरा विश्वास है कि कहानी का अंत आपको पसंद आएगा। और हां, कालशंकु कहानी एक जगह जाकर पूर्ण विराम से पहले अल्प विराम लेगी। उसकी मेरे पास एक जायज वजह है। कृपया भरोसा बनाए रखें और सुनते रहें वो कहानियां।